ठीक है, पेट्रोलियम सुनेंगे आप लोग, ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
तो राधा माधव करें या ना करें,
कर
समय कम है ना,
पौने छः तक कर
सकते हैं। तो कुछ कथा करेंगे, ठीक है, तो फिर राधा माधव छोड़ दें। तो आज राधा माधव नहीं कर रहे हैं, जो पौने छः बजे समाप्त करना है। और कार्तिक के विषय में एक बहुत सुंदर कथा है, तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो राधा माधव की जगह एक बार हरे कृष्ण मंत्र फिर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग जानते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है और अभी समाप्त होने वाला है। तो कार्तिक के महात्म्य में जो मैं सुना रहा हूँ, ये पद्म पुराण की एक घटना है। ये जो कथा है ये नारद जी सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? नारद जी। हरि बोल। ये माइक काम नहीं कर रहा, फिर भी सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को। तो नारद जी ये कथा सुना रहे हैं और सुन रहे हैं महाराज पृथु राजा, एक बहुत ही महान राजा हुए हैं जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। तो महाराज पृथु सुन रहे हैं। तो पृथु महाराज कहते हैं नारद जी से कि ये जो कार्तिक का व्रत है ये किसने किया, पहले किसी ने किया होगा और कैसे किया, तो ये मैं घटना सुनना चाहता हूँ। अच्छा प्रश्न है। कार्तिक का जो है व्रत प्राचीन काल में भी किसी ने किया, कैसे किया, उसे क्या फल प्राप्त हुआ, तो मैं ये घटना सुनना चाहता हूँ। इतिहास, प्राचीन इतिहास सुनना चाहता हूँ, आप कृपया वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, सही पर्वत पर कबीरपुर नामक नगर है। एक पर्वत है जिसका नाम है सही है, और उस पर्वत पर एक नगर है उसका नाम है कबीरपुर। क्या नाम है? कबीरपुर नामक नगर है। उसमें एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था धर्मदत्त। क्या नाम था? धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। आसीत सह्याद्री विषये करवीरपुरे पुराम ब्राह्मणो धर्मविद कश्चन धर्मदत्तेति विश्रुतः। वे ब्राह्मण सदा विष्णु का व्रत करने वाले थे। विष्णु का व्रत, कुछ लोग शिव जी का भी व्रत करते हैं, कोई देवी का व्रत करते हैं। जो देवी का व्रत करते हैं उन्हें शाक्त कहा जाता है, और जो शिव जी का व्रत करते हैं उन्हें शैव कहा जाता है, लेकिन जो विष्णु का व्रत करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। हम लोग कौन है? वैष्णव। तो वो ब्राह्मण कैसे थे? वैष्णव थे, सदा विष्णु का व्रत करने वाले थे। निरंतर विष्णु पूजा में तत्पर थे, द्वादशाक्षर मंत्र के जप में निष्ठावान थे। द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, लेकिन कलयुग में मंत्र 32 अक्षरों का है जो हम लोग हमेशा जप करते हैं, हरे कृष्ण वाला, ठीक है ना। तो एक समय कार्तिक महीने में पहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गए। एक पहर रात्रि जब रह गई, एक पहर रात्रि रह गई मतलब अंतिम प्रहर, रात्रि का अंतिम प्रहर। रात्रि का अंतिम प्रहर 3:22 से शुरू होता है ना। तो रात्रि जागरण का यह भी मतलब होता है कि आप 3:22 पर उठिए रात्रि की अंतिम प्रहर पर, जिसे कहते हैं निशांत काल, है ना। तो रात्रि के अंतिम प्रहर में जो है हरि जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गया। तो अगर हम 3:22 पर उठते हैं, तैयार होते हैं, 4:10 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और उसी मुहूर्त में मंगल आरती 4:30 होती है, तो ये जो है हरि जागरण का जो है मतलब ये भी है। कदाचित कार्तिके मासी हरि जागरणाय सह रात्र्याम तुर्याम शेषायाम जगा मैं हरि मंदिरम। हरि के पूजन की सामग्री लेकर वो ब्राह्मण जा ही रहा था। पूजन की सामग्री आप समझते, थाली थाली होती है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, है ना, तुलसी दल है और फूल हैं और कुछ वस्त्र है ना, तो सब चीज़ें जो है उसमें हैं। तो वो थाली लेकर के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था, पूजन की सामग्री लेकर वो ब्राह्मण जा ही रहा था। इसी समय एक भयंकर रूप वाली, टेढ़ी डाढ़ों वाली जीव जिसकी चलायमान है, भीतर को गड़े हुए लाल लाल नेत्र हैं और नग्न है, रूखे मांस और लंबे ओठ और घर घर शब्द वाली एक राक्षसी को देखा। वो राक्षसी, अब रात्रि का अंधकार, अंधेरे में वो राक्षसी को देखा। उसे देखकर वो भय से घबरा गए। कोई भी घबरा जाएगा, अकेले रात में सामने आ जाए कोई राक्षसी, है ना, घबरा गए और उनके अंग कांपने लगे। भय के मारे उस ब्राह्मण ने पूजा की सामग्री और पूजा के निमित्त लिए जल से उस राक्षसी को मारा, वही थाली ही फेंक के मार दी। उसने थाली में सब रखा था, पूजा का सामान रखा था, है वही उसने फेंक के मार दी, है ना, राक्षसी को मारा। ताम दृष्ट्वा भय वित्रस्तः कंपिता वय वस्तदाम पूजोपकरण सर्वे पयोभिश्चाहनद भयान। हरि का स्मरण करके ये एक परीक्षा है कि जब आपको भय का अवसर आता है तो आप क्या करते हैं, है? हरि कृष्णा उस समय आपके मुख से निकलता कि नहीं निकलता, है ना, क्योंकि हरे कृष्णा का जाप तो खूब कर रहे हैं उस समय। हरे कृष्णा या केवल कृष्णा, केवल हरि, है, आप बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते, ये परीक्षा है। 16 माला रोज करते हैं तो 25,000 नाम की संख्या, 27,000 नाम की संख्या तो कर रहे हैं पूरी, लेकिन परीक्षा क्या है, जब भय का अवसर हो तो मुँह से क्या निकलता है, अरे बाप, बाप रे, अरे मैया, क्या बोलते आप उस समय, क्या निकलता मुँह से, वो आपको खुद ही परीक्षा लेनी है अपनी, आप खुद ही अपनी परीक्षा लीजिए कि उस समय आपके मुँह से क्या निकलता है। उस ब्राह्मण के मुख से क्या निकला, हरी हरी, और डर के मारे उसने मारा राक्षसी को, लेकिन बोला उसने हरी, है, हरी का नाम बोला उसने। हरि का स्मरण करके तुलसी युक्त जल से मारने के कारण, अब नाम बोला हरी हरी और तुलसी का जल उसमें पड़ गया, सब सामान था उसमें, तुलसी का जल भी था, है? तो उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। इतने से संस्मृत्य है, संस्मृत्य यद हरेर नाम है तुलसी युक्त वारिणा सोहनत पातकम तस्यात् तस्मात् सर्वम अगालयम। इसके बाद पहले जन्म के कर्मों से उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण करके ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया। उसने, उसको सब कुछ याद आ गया कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जिससे मुझे राक्षसी का ये रूप प्राप्त हुआ है। तो ब्राह्मण को प्रणाम किया उसने, अभी तो खाने के लिए वो आई थी सामने, अभी तो उसका इतना शुद्ध हो गया उसका, है ना, हृदय। ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके वो बोली, अतः संस्मृत्य सा पूर्व जन्म कर्म विपाक जाम स्वाम दशाम ब्रवीद विप्रम दंडवच्चा प्रणम सा। कल्हा बोली, इस राक्षसी का नाम क्या है, कल्हा। कल्हा बोली, पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, हे ब्राह्मण, अतएव मैं कैसे उत्तम गति प्राप्त करूं। नारद जी बोले, नारद जी सुना रहे हैं ना ये कथा, नारद जी बोले, भली भांति प्रणाम करके अपने कर्म को कहती हुई कल्हा को देखकर ब्राह्मण विस्मित होकर बोले। तो ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ, देखो अभी तो प्रणाम कर रही है, अभी तो मुझे खाने के लिए तैयार थी, प्रणाम कर रही है। ताम दृष्ट्वा प्रणताम सम्यंग वदमानाम सुकर्म तन अतीव विस्मितो विप्रस तदा वचनम अब्रवी। धर्मदत्त बोले, किस कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई थी। अब उनको भी हिम्मत हुई पूछने की, जब वो प्रणाम कर रही है और कह रही मेरी कैसे अच्छी गति होगी, कैसे मैं छूटूंगी इस योनि से, तो उनका तूने क्या कर्म किया था, कैसी कर्म से तेरी ये दशा हुई है, तू कहाँ की है, तू कौन है, तेरा कैसा चरित्र है, सो सब मुझसे बता। केन कर्म विपाकेन त्वं दशामि दृशीं गतां कुतस्तस्या कचिं च किं शीला तत्सर्वं कथयस्व मे। कलह बोली, हे महाराज, स्वराष्ट्र नगर में मैं थी पिछले जन्म में। कौन से नगर में? स्वराष्ट्र नगर में मैं थी और भिक्षु नामक एक ब्राह्मण थे, मैं उनकी स्त्री थी। ब्राह्मण का नाम था भिक्षु, उनकी स्त्री थी और कलहा मेरा नाम था और मैं बहुत निष्ठुर थी। सौराष्ट्र नगरे ब्रह्मन् भिक्षुनामा भवद्विजः तस्याहं गृहिणी पूर्वं कलहा क्योति निष्ठुरा। मैंने कभी वचन से भी पति का शुभ नहीं किया, कभी मीठा भोजन खाने को नहीं दिया, मैं सदा पति को धोखा देती रही। न किंचन मया भर्तुर वजसा पी शुभम कृतम नार्पितम तस्य मिष्ठान्नम भर्तुर वंचनशीलया। मुश्किल हाथ से जब ब्राह्मण उद्विग्न हो गए, मेरे पति जब उद्विग्न हो गए मेरे व्यवहार से, तब उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार किया। तब मैंने विष खा करके प्राण त्याग दिए अपने पति को बदनाम करने के लिए। अपने पति को बदनाम करने के लिए विष खा करके प्राण त्याग दिए और मृत्यु को प्राप्त हुई और यम के दूत मुझे बांध कर मारते हुए यम लोक ले गए। ततोगरम समादाय प्राणां त्यक्त्वा मृत्युं गतां अथ बुद्ध्वा बध्यमानां मां निन्युर्यमे किंकरा। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। यमदूत मुझे बांध के ले गए, मारते हुए ले गए, यमराज के सामने खड़ा किया और यमराज जो है चित्रगुप्त से पूछते हैं। यमराज बोले, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किए हैं देखो जरा। लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है, सबका लिखा हुआ है खाता। यमराज कहते हैं चित्रगुप्त से, पढ़ो जरा इसके खाते में क्या लिखा है। इसने भला या बुरा जो कुछ कर्म किया हो उसी का फल पाएगी, निकालो इसका खाता। कलहा बोली, तब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए बोले, चित्रगुप्त बोले, इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया है और स्वयं मीठे अन्न को खाते हुए इसने अपने पति को नहीं दिया है। इससे ये बलगुनी नामक पक्षी की योनि में पड़ करके अपनी विष्ठा खाएगी। बलगुनी मतलब चमगादड़। चमगादड़ जो है, चमगादड़ का जो मल है वो उसके मुंह से ही निकलता है, तो एक प्रकार से अपना ही मल खाने जैसा हो गया ना। चमगादड़ की योनि इसलिए पाएगी ये क्योंकि अपने पति को ना खिला करके और छिप करके खाती थी मिठाई, तो चमगादड़ की योनि में अपना ही मल खाएगी। और इसने अपने पति से सदा द्वेष और झगड़ा किया है। अतश्च बलगुनी योन्याम स्विष्ठादि चतिष्ठतु भर्त द्वेष करी हेसा नित्यम कलह कारिणी। इसलिए ये विष्ठा खाने वाली शुकर योनि को प्राप्त होगी। तो अपना मल खाएगी चमगादड़ के रूप में, क्योंकि अपने पति को नहीं खिलाया, खुद खाया मिठाई और अपने पति के साथ झगड़ा किया है, तो सुकरी सुवरी भी बनेगी, दूसरों का भी मल खाएगी। दूसरे जन्म में क्या बनेगी? सुकरी, दूसरों का मल खाती। अपना मल खाएगी चमगादड़ के रूप में, पति को नहीं खिलाया और खुद खाती, और पति से झगड़ा किया तो सुकरी बनेगी, दूसरों का मल खाएगी। और सदा पाक करने के पात्र अर्थात कड़ाही और बटुली में ही अकेली भोजन करती थी कि दूसरे बर्तन भी ना खराब होंगे, जूठे नहीं होंगे, और पति को भी कुछ पता नहीं चलेगा, जिसमें बनाए उसी में खाती। तो बिल्ली की योनि प्राप्त करेगी, इसलिए बिल्ली की योनि भी प्राप्त करेगी। तीन योनियाँ, चमगादड़ की और दूसरी सुकरी और तीसरी बिल्ली की योनि। फिर इसने भर्ता के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, भर्ता को बदनाम करने के लिए, अपने पति को बदनाम करने के लिए विष खाया, इसलिए अति निंदित प्रेत शरीर में रहेगी। आत्महत्या की है तो प्रेत के शरीर में रहेगी। ये अब मरुदेश में पहुंचाने योग्य है, मरुदेश में जहां इसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और भूखी प्यासी जो है घूमती रहेगी, तो यहां पर जो है प्रेत योनि प्राप्त करेगी। तत्र प्रेत शरीरस्था चिरम तिष्ठत्वियम ततः ऊर्ध्वम योनित्रयम चैसा भुनक्त शुभ कारिणी। वहाँ प्रेत शरीर में बहुत समय तक रहेगी और फिर ये तीन योनियों को भोग करेगी, चमगादड़, फिर सुकरी, फिर बिल्ली। कलह बोली, तब से मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में भूख प्यास से पीड़ित अपने कर्म से सदा दुखी होकर के रही। अभी 500 साल हो गए मुझे इसी योनि में भूख प्यास से मैं पीड़ित हूँ, यहाँ पर घूम रही हूँ। क्षुत्रभ्याम पीड़िता विषय, अच्छा, साहम पंच शताब्दानी प्रेत देहे स्थिता किल क्षुत्रभ्याम पीड़िता नित्यम दुखिता स्वेन कर्मणाम। अब भूख प्यास से पीड़ित मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी इन दोनों नदियों के संगम पर आई कि कुछ पानी मिल जाए, मुझे प्यास बुझ जाए, तो वैश्य के शरीर में स्थित हो गया। जब उनके तट पर पहुंची तो शिव और विष्णु के गणों ने मुझे उसके शरीर से दूर कर दिया, मार मार करके वहां से निकाल दिया मुझे। तब हे ब्राह्मण, मैं भूख से पीड़ित आपकी दृष्टि में आई और आपके हाथ के तुलसी युक्त जल के संसर्ग से मेरे पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करो जिससे मैं आगे होने वाली तीन योनियों और इस प्रेत योनि से मुक्ति पा जाऊं। अभी प्रेत योनि में कितना और मुझे रहना पड़ेगा कुछ पता नहीं, उनका बहुत समय तक रहेगी, तो कितना और समय लगेगा, फिर आगे तीन योनियां और हैं, तो मैं कैसे छूटूं। इस प्रकार कल्हा के वचन सुनकर और पूर्व कर्म फल से उत्पन्न उसकी ग्लानी देख करके वो ब्राह्मण बहुत देर तक सोचकर दुख से ये वचन बोले। ब्राह्मण बोले, क्या नाम है ब्राह्मण का? नारद जी तो कथा सुना रहे हैं, धर्मदत्त, याद आया ब्राह्मण का नाम क्या है? धर्मदत्त। धर्मदत्त बोले कि देखो, तीर्थ दान और व्रत से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित को जो है उन पर अधिकार नहीं है। तुम प्रेत योनि में हो तो तीर्थ दान और व्रत में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो तेरी गिलाने को देख के मेरा मन खेद युक्त हो गया है, उद्धार किए बिना मेरा मन सुखी ना होगा। अब कैसे तेरा उद्धार करूं? तू तो तीर्थ नहीं कर सकती, ना व्रत कर सकती, ना दान कर सकती हैं, हैं? तो तीन योनि को देने वाले तेरे पाप बहुत उग्र हैं, तीन योनियां, और अति निंदित प्रेत योनि में भी थोड़े पुण्य से तू छूटेगा नहीं, थोड़ा पुण्य नहीं। अतः जन्म से आज तक मैंने जो कार्तिक का व्रत किया, कौन बोल रहे हैं? ब्राह्मण, धर्मदत्त ब्राह्मण बोल रहे हैं। जन्म से लेकर के आज तक मैंने जो कार्तिक व्रत किया है उस पुण्य के आधे भाग से तू उत्तम गति को प्राप्त कर ले। आधा जन्म से लेकर मैंने अभी तक कार्तिक का जो व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुझे दे रहा हूं, तो तू छूट जा इस कष्ट से, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ और व्रत के पुण्य से कार्तिक व्रत के पुण्य की क्षमता नहीं हो सकती। आतकम च तवा त्युग्रम योनि त्रैव्यपागतम नेवाल पैछीयते पुण्य प्रेतत्वं चाति गर्हितम् तस्मादा जन्मचरितम् यन्मया कार्तिक व्रतम तत्पुण्यस्यार्ध भागेन संगतित्वं अवाप्नुहि। तो क्या कहा? कार्तिक के पुण्य से कौन से पुण्य की बराबरी नहीं है? यज्ञ दान तपस्या तीर्थ है ना, इनकी कोई बराबरी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, तुझे क्या देता हूँ? जन्म से लेकर के अभी तक जितना मैंने कार्तिक व्रत किया उसका आधा पुण्य दे रहा हूँ। नारद जी बोले, नारद जी सुना रहे ना, नारद जी बोले ऐसा कहकर जैसे धर्मदत्त ने उसे द्वादश अक्षर मंत्र सुनाया या 32 अक्षर का मंत्र, अभी कलयुग में वही 32 अक्षर का मंत्र सुनाया और तुलसी दल से मिश्रित जल उस पर छिड़क दिया, वैसे ही वो प्रेत योनि से छूट गई और जल्दी अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदरी हो गई। हरि बोल। हुँ। इत्युक्त्वा धर्म दत्तोऽसौ यावत्ताम् अभ्यसेचयन् तुलसी मिश्रितो येन श्रावयन् द्वादशाक्षरम् तावत् प्रेतत्व निर्मुक्ता ज्वलदग्ने शिखोपमाम् दिव्य रूपे धरा जाता लावण्यन् लावण्येन यथेन्दिराम्। तब उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी में बोली, कल्हा बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी कृपा से नरक से छूटी, पाप के प्रवाह में डूबी हुई, मेरे लिए आप नौका हो गए। नारद जी बोले, उस ब्राह्मण से ऐसा कहती हुई उस कल्हा ने प्रकाशमान एक विमान को देखा। क्या देखा उसने? एक विमान को देखा जिसमें विष्णु जैसे रूप वाले गण थे। भगवान के जो गण हैं वो भी भगवान जैसे रूप वाले होते हैं, ये वो भगवान नहीं होते, उनकी चेतना ऐसी नहीं होती कि हम भगवान बन गए, है ना। तो मूर्खता है जो आजकल चल रही है ना, कि भाई हम भगवान हैं या हम भगवान बन जाएंगे। जो भक्त हैं उनको भगवान जैसा रूप मिल जाता है, चार भुजाएँ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, सब कुछ भगवान जैसे होते हैं। लेकिन कोई उनको नमस्कार करे तो तुरंत मना करते, नहीं 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 मैं भगवान नहीं हूँ। आप समझे ना, भगवान के वो सेवक होते हैं, है ना। तो उनकी चेतना ऐसी नहीं होती कि भाई मैं भगवान बन गया, है ना। तो कभी कोई भगवान नहीं बनता है। हम लोग भगवान के क्या बनते हैं? सेवक बनते हैं, माया के सेवक। यहाँ पर हम क्या हैं? माया के सेवक। इसलिए बार बार जन्म मरण कष्ट ही कष्ट भोग रहे हैं। या भगवान के सेवक बनेंगे तो जन्म मरण का कोई कष्ट नहीं है, नित्य शरीर प्राप्त होगा, है ना। तो वे भगवान के सेवक थे, विमान में उसको लेने के लिए आए। उस समय विमान को धर्मदत्त ने विस्मय सहित देखकर उन गणों को विष्णु का रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? कि मैंने आधा पुण्य दिया तो ये तो वैकुंठ जा रही है, जबकि मुझे तो नहीं मिला। मेरे आधे पुण्य से ये पापनी तो वैकुंठ जा रही है, जबकि मैं तो नहीं गया और इसको लेने के लिए आए। तो विस्मित हुए और उन गणों को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। इत्थं सा वदति विप्रम ददर्शायान्तमम्बरान् विमानं भास्वरैर्युक्तं विष्णुरूपैधरैर्गणे अथ सा तद्विमानाग्र्यं द्वास्थाभ्यामधिरोपिता पुण्यशीले सुशीलाभ्याम् अप्सरोगणे सेविताम्। उस कल्हा को पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया। वो द्वारपाल दो थे, उनके नाम क्या हैं? पुण्यशील और सुशील। द्वारपाल भगवान के द्वारपाल हैं, इनका नाम क्या है? पुण्यशील और सुशील, है ना। जय विजय भी द्वारपाल हैं भगवान के, वैकुंठ के कई द्वारपाल हैं, अलग अलग द्वारों के, है ना। तो किसी किसी द्वार में पुण्यशील और सुशील हैं, किसी द्वार में जो है जय विजय हैं, है ना। तो पुण्यशील और सुशील नामक दोनों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठाया और उस ब्राह्मण की प्रशंसा करी। ब्राह्मण की प्रशंसा करी क्योंकि ब्राह्मण क्या सोच रहे कि मेरा क्या दोष, मैं तो बड़ा दोषी हूँ कि मुझे भगवान का वैकुंठ नहीं मिला और मेरे आधे पुण्य से ये जा रही है, तो मेरे अंदर तो कोई बहुत बड़ा दोष होगा। तो उन्होंने उठाया प्रशंसा की कि तुम्हारे अंदर तो बहुत गुण है। उन्होंने बताया कि नहीं नहीं तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है, तुम्हारे अंदर तो बहुत गुण है। प्रशंसा की और वचन बोले, गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो। तुम दिनों पर दया करने वाले हो, धर्मज्ञ हो, सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। आबालात्वच्छुभम त्वेतन् यत्त्वया कार्तिके व्रतम् कृतम् तस्यार्धदानेन यदस्या पूर्वसंचितम्। बचपन से आज तक तुमने जो कार्तिक का व्रत किया उसका आधा फल देने से कल्हा के 100 जन्मों के संचित पाप नष्ट हो गए हैं। क्या समझे? कितना? 100 जन्म के संचित पाप इसके नष्ट हो गए हैं। तुमने क्या किया है? आधा पुण्य दिया है बचपन से लेकर के अभी तक कार्तिक का। इसके पूर्व जन्म के पाप तो स्नान ही से दूर हो गए, पिछले जन्म के पाप तो स्नान से ही दूर हो गए। हैं, तुमने जल डाला ना, तुलसी का जल डाला और हरि का जागरण, अच्छा हाँ नहीं, तुमने जो स्नान किया कार्तिक में, जो तुम स्नान किया तो उससे जो है इसके पिछले जन्म के पाप दूर हो गए और हरि का जागरण जो तुमने किया उसके फल से विमान आया है। हरि का जागरण किया यानी मंगल आरती का, जो नियम तुम्हें पालन किया उसके फल से विमान आया है। हे साधु, ये नाना प्रकार के भोगों से युक्त वैकुंठ को जा रही है। हरि जागरणाद्यश्च विमानम् इदमाश्रितम् वैकुंठम नियते साधु नाना भोगे युता त्वयम्। और जो कार्तिक में तुमने दीप दान किया, क्या किया? कार्तिक में दीप दान किया है, उसके पुण्य से ये तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ है। अग्नि की ज्वाला के समान जो है इसका जो रूप है, तो ये कैसे हुआ? तुम्हारे दीपदान के द्वारा। कार्तिक व्रत में किए हुए तुलसी का जो तुमने पूजन किया है, है? उससे ये विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। तुलसी की जो पूजा की है उससे ये कहाँ जा रही है? वैकुंठ में जा रही है, तो भी भगवान के समीप जा रहे हैं। वैकुंठ में सब लोग भगवान के समीप थोड़ी होते हैं, लेकिन वैकुंठ में भी जा करके भगवान के समीप जा रही है। क्यों? कार्तिक में तुमने क्या किया? तुलसी पूजन किया है, इस कारण से दीपदान भव पुण्य तेज साम रूप मास्थिता तुलसी पूजनाद्य कार्तिक व्रत के शुभ। जो तुमने इसको पुण्य दिया उससे विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई, और इस जन्म के अंत में स्त्रियों से तुम भी विष्णु लोक जाओगे। तो तुम चिंता मत करो कि तुमको नहीं मिला, तुम्हारा तो जाना निश्चित है। इस जीवन के अंत में तुम अपनी पत्नियों के साथ विष्णु लोक में जाओगे। विष्णु सन्निधि गा जाता तो या दत्ते कृपा निधे तुम अप्यस्य भविष्यन्ति भार्याभ्याम सहयास्यसी। मैं तुम्हारी जो दो पत्नियां हैं उनके साथ तुम भी जाओगे विष्णु लोक, पहले से निश्चित हो चुका है। ये तुम चिंता मत करो कि तुमसे पहले ये जा रही। और विष्णु वैकुंठ भवन में भगवान के समीप स्वरूपता मुक्ति को प्राप्त होगे। वे धन है और वे कृतकृत हैं, और उन्हीं का जन्म सफल है जिन्होंने भक्ति से तुम्हारी भांति विष्णु पूजा की है। भली भांति पूजित विष्णु मनुष्यों को क्या फल नहीं देते हैं। वैकुंठ भवनम विष्णु सान्निध्यम चा स्वरूपताम ते धन्या कृतकृत्यास्ते तेषां चा सफलो भव। यैर्भक्त्याराधितो विष्णुर् धर्मदत्त त्वया यथा सम्यगाराधितो विष्णु किं न यच्छति देहिनाम। जिन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को स्थिर स्थान प्रदान किया है, ध्रुव महाराज को, और जिन भगवान के नाम स्मरण से ही मनुष्य सदगति और उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से उनके समीप चला गया। कौन? गजेंद्र। गजेंद्र मतलब हाथी। नाम स्मरण से भगवान के समीप चला गया, उसको ग्राह ने पकड़ा था। ग्राह मतलब मगरमच्छ ने पकड़ा था। तो जिनके नाम स्मरण से उनके समीप प्राप्त हुआ और जय नाम का गण कहलाया, वहाँ वैकुंठ में वो जय नाम का भगवान का गण बन गया। तुमने भी विष्णु भगवान का पूजन किया, इसलिए तुम भी कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उनके समीप जाओगे। ग्राह गृही तो नागेन्द्रो यन्नाम स्मरणात् पुरा विमुक्ता सन्निधिं प्राप्तो जातोयम् जय संग कहा यतस्तु यार्चितो विष्णु तत्सान्निध्यं प्रयाससि बहुन्यब्द सहस्राणि भार्याद्वयतस्य ते। तदनंतर जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तब पृथ्वी में आकर सूर्य वंश में उत्पन्न होकर एक प्रसिद्ध राजा होगे। क्या बनोगे? सूर्य वंश में एक प्रसिद्ध राजा, और तुम्हारा नाम होगा दशरथ। दशरथ, तुम जो है राजा दशरथ, सूर्य वंश में राजा दशरथ बनोगे। वहाँ भी तुम दोनों स्त्रियों से युक्त होगे। जो तुम्हारी स्त्रियाँ अभी भी हैं वही तुम्हारी स्त्रियाँ होंगी। दो स्त्रियाँ कौन है? कौशल्या और सुमित्रा, और तीसरी कलहा भी साथ रहेगी। क्या बनेगी? कैकेयी। ये कलहा, ये भी तीसरी साथ रहेगी, क्योंकि वो भी तुम्हारे आधे पुण्य की अधिकारिणी है। आधा पुण्य तुम्हारा हंसने लिया है, तो ये भी जो है तुम्हारी तीन पत्नियां हो गई तुम्हारी। नामना दशरथस्तत्र भार्यादयतः पुनः तृतीयानया चापि याते पुण्यादर्द भागिनी तत्रापि तव सान्निध्यं विष्णुर्यासते भूतले आत्मानं तव पुत्रत्वे प्रकल्प्यामरे कार्ये क्रे। उस जन्म में, उस जन्म में विष्णु पृथ्वी में तुम्हारी समीपता को प्राप्त होंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। आप लोग जानते हैं भगवान चार रूपों में है? उनके पुत्र बने है ना। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से ना तो यज्ञ ना दान और ना तीर्थ अधिक हैं, अर्थात ये कार्तिक का व्रत सब यज्ञों में श्रेष्ठ है। तवोर्जस्य व्रतादस्मात् विष्णु संतुष्टि कारकान् न यज्ञाना च दानानि न तीर्थान्यधिकानि वै। हे ब्राह्मण तुम धन्य हो, इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला ये व्रत हुआ है। इस व्रत के आधे भाग के फल को प्राप्त करके कलहा हमारे साथ श्री भगवान के समीप जा रही है। धन्योऽसि विप्रेन्द्र यतस्त्वेतन् धन्योऽसि विप्रेन्द्र यतस्त्वे तयस्तुयतन् व्रतं कृतं तुष्टिकरं जगद्गुरो यदर्धभागात् सफला मुरारे प्रणीयते स्माभिरियं सलोकताम्। तो ये जो है कथा जो मैंने आपको सुनाई है, इसमें बहुत से रहस्य हैं और बहुत सी शिक्षाएं हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि क्या वैकुंठ टेम्परेरी होता है? नहीं, वैकुंठ टेम्परेरी नहीं होता है, वैकुंठ तो परमानेंट है। वैकुंठ से अगर आते हैं कुछ भक्त, अगर वैकुंठ से आते हैं तो भगवान की लीला में सहायता करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि बताया गया कि पुण्य क्षीण होने पर तुम आओगे, लेकिन वैसे वो वहाँ पुण्य क्षीण नहीं होता, पुण्य क्षीण नहीं होता वहाँ पर, ये तो मतलब ऐसा कहा गया है। लेकिन वहाँ से अगर कोई अगर आता है तो भगवान की लीला में सहायता करने के लिए आता है, और फिर जाते हैं तो वापस वैकुंठ में ही जाते हैं, ठीक है ना। और कोई व्यक्ति वैकुंठ अगर चला जाए और उसकी योग्यता नहीं है, कोई मतलब बहुत बड़ी शक्तिशाली विधि के प्रभाव से चला जाए, जैसे कलहा राक्षसी वैकुंठ चली गई, लेकिन योग्य तो नहीं थी, वैकुंठ जाने के योग्य तो नहीं थी, लेकिन शक्तिशाली विधि के प्रभाव से अगर वो वैकुंठ चली जाए तो फिर दोबारा पृथ्वी में आते हैं ऐसे लोग और उस विधि को पूरा करते हैं, योग्यता प्राप्त करते हैं, फिर वैकुंठ में जाते हैं, ठीक है ना। तो वैकुंठ में अगर कोई व्यक्ति अयोग्य होने होते हुए भी चला जाए किसी शक्तिशाली विधि के प्रभाव से, तो फिर से जब आते हैं पृथ्वी में तो उस विधि को पूरा करते हैं, ठीक है, और योग्यता प्राप्त करते हैं, फिर वैकुंठ में ही जाते हैं। तो इसलिए वो कुछ खतरे की बात नहीं है इसमें, ठीक है ना, इसलिए वो गिरना नहीं कहलाता। हाँ जी, हाँ, वो तो आए तो भगवान की लीला में, वो तो भगवान की लीला में आए, ठीक है ना, वो भगवान के संगी हैं इसलिए आए। लेकिन कोई और जैसे कलहा है तो ये तो योग्य नहीं है, लेकिन ये जब आई तो इनको जो है समझना चाहिए कि ये अपनी विधि को, उस विधि को पूरा करने के लिए आए, ठीक है। हाँ जी, धर्म और भक्ति, भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। जब भगवान के सर्व धर्मान परित्यजमा में एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ, है ना। तो परम धर्म सवे पुंसाम परो धर्मो या तो भक्ति रधोचे, तो मनुष्यों का परम धर्म वही है जिसमें भगवान की भक्ति हो। और वो कैसी भक्ति हो? अहेतु की अप्रतिहता, एक तो बिना हेतु के हो, मतलब कोई भौतिक कारण नहीं होना चाहिए, कोई कामना नहीं होना चाहिए, और अप्रतिहता यानी बिना रुके हो, बिना रुके यानी बीच में गैप नहीं हो। हाँ जी माता जी, हैं, हाँ, यज्ञ, ये सब जो यज्ञ हैं, दान हैं, तप हैं, ये सब कार्य पवित्र करने के लिए होते हैं, ये सब जो कार्य हैं ये पवित्र करने के लिए होते हैं। गीता में भगवान ने तीन गुणों में बताए हैं, यज्ञ भी, दान भी, तपस्या, तीनों गुणों में बताए हैं। सत्वगुण में कोई व्यक्ति अगर करता है तो बिना किसी भौतिक कामना के करता है, है, तो उसकी शुद्धि होती है, उसकी चेतना शुद्ध होती है और भक्ति में ही, भक्ति की दिशा में ही वो आगे बढ़ता है। लेकिन रजोगुण में कोई व्यक्ति यज्ञ दान तपस्या करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कुछ भौतिक सुख प्राप्त होंगे, ठीक है ना। और तमोगुण में कोई करता है यज्ञ दान तपस्या कर्म, तो वो जो है फिर उससे और उल्टा परिणाम प्राप्त होता है।
पाप और पुण्य क्या होता है? पाप और पुण्य क्या होता है? मतलब कोई बोलता है कि इसने पाप कर्म किया है, कोई बोलता है
पाप कर्म जो है हम शास्त्रों के विरुद्ध जो करते हैं वो सब पाप कर्म है, ठीक है। और पुण्य कर्म हैं जो शास्त्रों के अनुसार करते हैं लेकिन भौतिक कामना से करते हैं तो पुण्य होता है ना। लेकिन अगर हम जो भौतिक कामना ना हो और हम वही कर्म करते हैं शास्त्रों के अनुसार तो फिर वो जो है हमें भक्ति की ओर ले जाता है, सात्विक। हाँ जी, पति को तब मिलेगा पत्नी की भक्ति अगर वो पत्नी से विरोध नहीं करता, ठीक है। अगर जो है पत्नी से वो विरोध नहीं करता तो पति को उसकी भक्ति का आधा फल मिलेगा। लेकिन अगर वो विरोध करता है तो फिर उसका अलग से भी कर्म बनता है, ठीक है ना। तो कुछ मिलता भी है उसको फल, लेकिन साथ साथ उसका एक अलग कर्म भी बन रहा है, उसका उल्टा कर्म भी बन रहा है कि वो विरोध कर रहा है, ठीक है ना। तो वो बहुत खतरनाक है। और कोई तो मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। अच्छा, ये जो धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे तो एक पर्वत का नाम बताया गया है कि उस पर्वत में वो रहते थे, वो कौन सा पर्वत है याद है किसी को? है सही है पर्वत, सही है पर्वत। और सही पर्वत में एक नगर का नाम बताया गया, करबीरपुर, करबीरपुर नगर, ठीक है। धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे, है ना। तो हरि जागरण के लिए, कार्तिक का महीना चल रहा था, हरि जागरण के लिए हरि मंदिर में जा रहे थे। तो कौन सा समय है हरि जागरण का? हाँ, 3:22 से उठना और फिर मंगल आरती व कार्यक्रम करना, ठीक है ना। तो ये हरि जागरण कहलाता है, हरि जागरण के लिए वो जा रहे थे, है ना। तो रास्ते में उन्होंने देखी, राक्षसी देखी, कैसा रूप था उसका? बहुत भयानक रूप था, है ना, जीभ लप लपा रही थी, है ना। और ब्राह्मण के ऊपर आई आक्रमण करने के लिए, खाने के लिए आई, तो ब्राह्मण ने डर के मारे क्या किया? थाली फेंकी और मुझसे भी कुछ बोला? हाँ, हरी हरी बोला डर के मारे। तो ये परीक्षा है ना हमारी और आपकी सबकी, कि अगर कोई डर पैदा हो जाए तो समय आप क्या बोलेंगे? हरी हरी या कृष्णा, कुछ भी, हाँ हरे कृष्णा, क्या बोलेंगे? ये आपको खुद ही देखना है, आपको खुद ही टेस्ट करना, अपना अपनी परीक्षा लेना है, है ना। क्योंकि ऐसे खतरे हमेशा होते ही हैं, सड़क पार करते हैं उस समय भी खतरा होता है, उस समय आप क्या बोलते हैं, है ना। ट्रक सामने आ जाए उस समय आप क्या बोलेंगे? हाँ, तो ये आपकी परीक्षा है कि 16 माला जप कर रहे हैं, कितने लोग 16 माला जप कर रहे हैं? 16 माला, 16 माला से कम कितने लोग कर रहे हैं? अच्छा, तो आप लोग माला जप जरूर करिए, माला जप जरूर करिए, क्योंकि ये जो है बहुत ज़रूरी है, नियम बनाना कि कम से कम हमें इतना माला जप करना है, ये बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन फिर इसकी जो परीक्षा है वो क्या है कि हर समय आपको बोलना है ये माला पर जप करना, ये कम से कम का नियम है। इसका ये मतलब नहीं कि बस आपका काम पूरा हो गया, ये कम से कम का नियम है। लेकिन
जो कोई माला कर रहा है उसका दिमाग कहीं और जा रहा है और बस माला माला कर रहा है, राम राम जप रहा है, जैसे उसका मन उसमें नहीं है, मन कहीं और जा रहा है।
हाँ, तो फिर उसको मन कहीं और जा रहा है तो भी जप करना ही है, क्योंकि जप करना है। और आप जप कर रहे हैं तो 16 नाम कैसे बोल रहे हैं? फिर आपको जो है मतलब किसी न किसी से मन लगाना ही पड़ेगा, 16 माला कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। और हर मन का को हर मंत्र के साथ, माता जी अभी आप मन बोलिए, सुनो, हर मंत्र के साथ अब मन के को बदल रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं? इसका मतलब है कि मन मन तो है ना, तो जा भी रहा है मन, लेकिन आ भी रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है मतलब करना है, तो मन तो जाएगा ही, और मन का जो है काम ही है जाना, इसलिए इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है कि भाई मन क्यों जा रहा है। मन तो हमारा भी जाता है, आपका भी जा, सबको जा रहा है, सबका जा रहा है, लेकिन जब आप करते हैं है ना, तो अगर आपका मन नहीं लगता है तो माला नहीं खिसकेगी, वो मन का नहीं खिसकेगा, और जब माला पूरी हुई तो वो मन का नहीं खिसका पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि माला पूरी हो गई, है ना। तो इसका मतलब मन आपको लगाना पड़ता है, चाहे आप भार समझ करके करिए लेकिन करिए, इससे भी आपको लाभ है। अगर आपको लगता है कि हैं कि कौन से इस चक्कर में फंस गए हम,
ये तो ऐसी बात नहीं,
ऐसी बात है, ऐसी बात है। मैं देखो अभी इतने ऊंचे धरातल पर आप नहीं हैं, आप कहते ऐसी बात नहीं है, इतने ऊंचे धरातल पर आप नहीं हैं, अभी आपको जो है भार लगेगा, क्योंकि कई तरह के काम हैं उनके ऊपर, ये भी लग रहा है तो भार लगता है, लेकिन भार समझ करके भी अगर आप करते हैं तो अभी इसमें लाभ है, नहीं बता रहा हूँ। ऐसी बात क्यों नहीं है, ये भार है, और कई तरह के भार हैं हमारे ऊपर, कई तरह के बंधन हैं उनके साथ में, और आपको ये भार लेना है, ये भार आपके ऊपर डाला जाता है। जो गुरु हैं, गुरु का मतलब है भारी, और वो आपको भार डालता है आपके ऊपर कि आप भार लीजिए। कई चिंताएं आपके ऊपर हैं, एक चिंता ये भी आप लीजिए, तो आपकी चिंता होनी चाहिए, जैसे आप उठते हैं आपकी चिंता होनी चाहिए कि मुझे माला जप करनी है, पूरी संख्या करनी है, ये आपकी चिंता है, ये चिंता लो, ठीक है ना। और कितनी जल्दी पूरी होती है वो भी आप कोशिश करते हैं कि हाँ कितनी जल्दी जल्दी पूरी हो जाए तो मैं छूट जाऊँ इस भार से, तो इसमें भी दोष नहीं है, ठीक है ना, इसमें भी दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो है वास्तविकता के धरातल पर आइए, वास्तविक धरातल पर आइए, क्योंकि कई तरह के काम हैं, घर के भी काम हैं, और जो है समाज के परिवार के बहुत से काम होते हैं ना। लेकिन इस तरह से भी आप जो है अगर जाप करते हैं तो भी आपको लाभ होता है। अभ्यास, अभ्यास करिए, जल्दी करने का अभ्यास करिए, अगर आप जल्दी करते हैं तो इस अभ्यास से जो है आप जल्दी कर सकते हैं, लेकिन वो होना चाहिए 16 नाम, आप 16 नाम जो है कैसे आप बोल सकते हैं जल्दी, तो ये भी एक अभ्यास की बात, ठीक है ना, तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यही 16 नाम को आप 15 नाम या 14 नाम मत करिए, ठीक है ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो मतलब आप नाम छोड़ रहे हैं, 16 नाम नहीं बोल रहे हैं, 8 नाम बोल रहे हैं, है ना, तो ये नहीं, 16 नाम बोल करके आप जल्दी अगर कर सकते हैं तो आप करो, या आपको सुनना भी है, कानों में सुनना है, ठीक है ना। तो कल्हा नाम की राक्षसी पिछले जन्म में कौन थी, कहाँ थी, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी, कल्हा नाम उसका, कल्हा नाम था, है ना। तो यमदूतों ने, चित्रगुप्त ने बताया कि इसको सबसे पहले प्रेत योनि प्राप्त होगी। प्रेत योनि क्यों प्राप्त होगी, है आत्महत्या की है, इसने विष खा करके आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि को प्राप्त करेगी, है ना, प्रेतोनि। और कहाँ पर प्रेतोनि को प्राप्त करेगी, मरु देश में, जहाँ हाँ पानी नहीं मिलता है, भूखी प्यासी बहुत समय तक प्रेतोनि में रहेगी, ठीक है। अच्छा, प्रेतोनि भोगने के बाद फिर कौन सा जन्म पहले मिलेगा इसको, चमगादड़ का, चमगादड़ की योनि में क्या होता है, अपना ही मल खाना पड़ता है, अपना ही मल खाना पड़ता है चमगादड़ की योनि में। तो क्यों चमगादड़ की उन्हें मिलेगी, इसने क्या किया, हाँ पति को ना खिला करके, हाँ चोरी चोरी खुद मिठाई खाती थी, तो चमगादड़ की उन्हें में जो है ये अपना ही मल खाएगी, ठीक है। फिर दूसरी उन्हें किसको क्या मिलेगी चमगादड़ के बाद, बिल्ली की सूकरी, हाँ सूकरी की उन्हें मिलेगी, हैं सूकरी की उन्हें में दूसरों का मल खाएगी, क्यों, इसने क्या किया, नहीं नहीं अपने पति के साथ झगड़ा कर दी थी, अपने पति के साथ झगड़ा कर दी थी, इसलिए शुक्र शुक्री योनि मिलेगी इसको, है ना। उसके बाद फिर कौन सी योनि मिलेगी? बिल्ली की योनि। क्यों, क्या किया इसने? हाँ, जिस बर्तन में पकाया जाता उसी में खाती थी, है ना। क्यों खाती थी पता नहीं चलेगा पति को, उसने बना कर उसी में खा लेती थी जिससे पति को ना पता चले। तो बिल्ली की योनि, है ना, तीन योनि प्राप्त होगी, है ना। तो जब उसने कहा ब्राह्मण से कि मुझे आप प्रेत योनि से भी बचाइए और आगे जो तीन योनियाँ मिलने वाली उनसे भी मुझे बचाइए, हैं, तो ब्राह्मण ने उसको क्या उत्तर दिया? नहीं, पहले तो कुछ और विचार किया था कि इसको कुछ बताऊं मैं, है, हाँ, कि यज्ञ है, दान है, तीर्थ है, ये करे। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि प्रेत योनि में नहीं हो सकता, अधिकारी नहीं। अगर इसको मैं बोलूँगा कि इस तीर्थ में जा कर के तू जा रहे, उस स्थान में जा कर रहे, तो प्रेत योनि में अधिकारी नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन मेरा, मुझे तेरा उद्धार तो करना ही है किसी तरह से, है ना। तो छोटे छोटे पुण्यों से तो तेरा उद्धार होने वाला नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेरा, हाँ, दुष्कर्म बहुत ज़्यादा है तेरा। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्या करूँगा? हाँ, बचपन से लेकर अभी तक कार्तिक का जो मैंने व्रत किया है उसका आधा पुण्य दे रहा हूँ। आधा पुण्य दिया है, और तुलसी जल उसमें डाल करके और द्वादश अक्षर मंत्र या 32 अक्षर का मंत्र बोला, उससे क्या हो गया? 100 जन्मों के पापों से छूट गई और दिव्य रूप धारण, उसको दिव्य रूप प्राप्त हो गया है, उसको दिव्य रूप प्राप्त हो गया। अब उसको दिव्य रूप प्राप्त हुआ तो ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने तो ये सोचा था कि मैं इसको इस पाप से छुड़ा दूं तो चलो अब ब्राह्मण परिवार में पैदा हो जाएगी, जैसे मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, और कुछ सदाचार करेगी और भक्ति करेगी। लेकिन उसको तो क्या हो गया? वैकुंठ, अब तो वैकुंठ से आ गए विमान, वो विष्णुदूत आ गए विमान लेकर के। तो ब्राह्मण तो इतना सोचा नहीं था कि इतना हो जाएगा, और उनको खुद भी नहीं हुआ ऐसा। तो वो तो अपने अंदर बड़ा दोष मान लिया कि मेरे अंदर कितना दोष है कि मुझे तो वैकुंठ मिला नहीं, मेरे लिए तो विमान आया ही नहीं और इसके लिए विमान आ गया, और जबकि ये बहुत पापनी है ना। तो उन्होंने प्रणाम किया विष्णुदूतों को, तो विष्णुदूत समझाने लगे, वो समझ गए कि इनके अंदर बड़ी शंका हो रही है ना। तो क्या बोले वो विष्णुदूत, क्या बोले? आप अपनी दोनों पत्नियों के साथ वैकुंठ जाएंगे, निश्चित है, आप तो इसमें कोई चिंता ना करिए, है ना, आप चिंता ना करिए, है ना। और फिर उन्होंने कुछ बताया था, उन्होंने कुछ बताया था, तो उसने क्या बताया था? पहला तो ये बताया कि इसके 100 जन्मों के संचित पाप कैसे नष्ट हुए हैं, इसके 100 जन्मों के संचित पाप कैसे नष्ट हुए हैं, क्योंकि तुमने जीवन भर कार्तिक का जो व्रत किया उसका आधा पुण्य दिया, इससे इसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो गए, ठीक है। हाँ, तो जो तुम स्नान करते थे कार्तिक में, जो स्नान करते थे उससे इसके पाप नष्ट हुए, पहली बात यह है। और जो विमान आया, जो वैकुंठ से विमान आया इसको ले जाने के लिए, वो कैसे आया? तुमने कार्तिक में क्या किया? ब्राह्मण ने कार्तिक में क्या किया? नहीं, हरि जागरण जो किया तुमने कार्तिक में, जो हरि जागरण किया, यानी मंगल आरती है, हरि जागरण, रात्रि के अंतिम प्रहर में जागना और भगवान की पूजा प्रार्थना करना, तो इससे क्या हुआ है? इसके लिए वैकुंठ से विमान आया है ना। और इसको जो इतना जो है रूप प्राप्त हुआ है, चमक, इतना तेज इसके रूप में, इतना तेज है, ये कैसे हुआ? दीपदान, कार्तिक में जो तुमने दीपदान किया है, इससे इसको इतना तेज प्राप्त हुआ है ना, और भगवान के समीप जा रही है। वैकुंठ में भी जाना अलग बात है, लेकिन भगवान के समीप जाना वो कुछ विशेष बात है। तो भगवान के समीप क्यों जा रही है? तुमने क्या किया था कार्तिक में? तुलसी का पूजन किया था, तुलसी का पूजन किया था, उससे वो ये भगवान के समीप जा रही है ना। और फिर क्या कहा कि आप अपने दोनों पत्नियों के साथ जाएंगे वैकुंठ में है? और उसके बाद जब आप जन्म लेंगे तो कौन से वंश में जन्म लेंगे? सूर्य वंश के एक महान राजा होंगे। क्या नाम होगा आपका? दशरथ। और आपकी जो दो पत्नियां हैं वो कौशल्या और सुमित्रा बनेंगी, और तीसरी पत्नी भी आपकी के ये कौन है? कलह राक्षस, ये तीसरी पत्नी बनेगी। आधा पुण्य से लिया है आपसे, ये भी तीसरी पत्नी बनेगी है ना। तो ये सब जो है बड़े आश्चर्य की बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, तो कार्तिक के महात्म्य की ये जो है मतलब बड़ी अद्भुत घटना है। और कोई प्रश्न किसी का? तो कार्तिक में बहुत लोग मंगल आरती का नियम बनाते हैं। अगर आप मंदिर नहीं आ सकते हैं तो अपने घर में भी मंगल आरती कर सकते हैं है ना। और विशेष रूप से संसार दामनल जो प्रार्थना है, तो इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि हम तो वो श्लोक नहीं पढ़ते हैं जो इसके महात्म का है, लेकिन नवा श्लोक जो है इसके महात्म का है। श्रीमद् गुरोरष्टक मेद उच्चैर ब्राह्मे मुहूर्ते पठती प्रयत्नात्। ये जो गुरुअष्टकम प्रार्थना है, संसार दामनल की प्रार्थना है, जो प्रयत्न पूर्वक ब्राह्म मुहूर्त में पाठ करता है, श्रीमद् गुरोरष्टक मेद उच्चैर, उच्चैर का मतलब ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर में जो ब्राह्म मुहूर्त में पाठ करता है। ब्राह्म मुहूर्त मतलब 4:10 से 4:58 के बीच में है। तेने वे वृंदावन नाथ साक्षात सेवे व लभ्य दोनों सुनते ही वे, तो उसको वृंदावन नाथ की साक्षात सेवा प्राप्त होगी इस शरीर के अंत में। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसका महात्म बताया है। तो गुरुअष्टकम प्रार्थना, संसार दावनल प्रार्थना, ये उस समय ऊंचे स्वर में अगर बोली जाए, ठीक है ना, तो इसमें अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है गुरुअष्टकम संसार दावनल। आप में से कितने लोग जानते हैं इस प्रार्थना को? अगर याद नहीं है तो भी जानते हैं ना, गुरुवर्षकम प्रार्थना संसार दावनल। मंदिर में 4:30 जब दर्शन होता है तो यही प्रार्थना गाई जाती है, संसार दावनल, ठीक है ना। तो ये प्रार्थना ब्राह्म मुहूर्त में अगर आप अपने घर में भी पाठ करें, 4:10 से 4:58 के बीच में ब्राह्म मुहूर्त होता है, 48 मिनट का ब्राह्म मुहूर्त होता है, तो फिर कार्तिक के महीने में तो और विशेष इसका जो है ला, हाँ यहाँ 4:30 था, प्रभुपाद ने नियम बनाया 4:30, तो ये 10 मिनट में हो जाती है। 10 मिनट में दोहरा करके भी कि एक भक्त उसको दो बार गाता है, फिर सब लोग भी इसको दो बार गाते हैं, तो इस तरह से 4 बार, हर पंक्ति 4 बार गाई जाती है, तो भी 10 मिनट में हो जाती है। कुल मिला के 8 श्लोक होते हैं और 8 श्लोक में 16 पंक्तियाँ होती हैं, तो उनको जो है 4-4 बार दोहराया जाए तो भी 10 मिनट में हो जाएगा। तो आप घर में भी अपने इसका पाठ कर सकते हैं। हाँ 10 मिनट आप लगाइए इसको, क्योंकि जो है अगर समय है 48 मिनट का समय है, 10 मिनट तो कम से कम लगाओ इसमें प्रार्थना में, ठीक है ना। तो आप कम से कम दो बार दोहराओ या 4 बार दोहराओ हर पंक्ति को, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं आती है, अगर आपका अभ्यास नहीं है, तो इसको रिकॉर्डिंग कर लो, आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी, रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है ना, या रिकॉर्डिंग पहले से ही मिल जाएगी यहाँ पर भी बुक शॉप में, मंगल आरती की रिकॉर्डिंग, सवेरे की सब प्रार्थनाएँ है ना, तो उसको आप जो है अपने घर में अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।